Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ हम शेयर बाजार की संजीदा चाल पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा को अपने विचारों से समृद्ध करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद निखिल जी.
और सबसे पहले हेडलाइंस को लेकर के आपके सामने है अर्जुन चौधरी.
Benchmark domestic stock market indices rise nearly 1%. Sensex adds over 700 points to close at 79,273. Nifty reclaims 24,500 level. Major Asian stock markets end in positive territory. And global crude oil prices decline marginally.
शेयर बाजारों में लगभग 1% की तेजी. सेंसेक्स में 700 अंक से अधिक का उछाल. निफ्टी ने 24,500 का स्तर पर फिर से प्राप्त किया और प्रमुख एशियाई बाजार आज लाभ के साथ बंद हुए. वहीं वैश्विक कच्चे तेल में मामूली गिरावट.
And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any फाइनेंशियल डिसीजन.
देश के प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक आज सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1% की तेजी देखी गई. सेंसेक्स 753 अंक यानी 0.96% बढ़कर 79,273 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 212 अंक यानी कि 0.87% ऊपर चढ़कर 24,577 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित शेयर बाजार में भी आज तेजी देखी गई. निफ्टी मिड कैप 100 लगभग 0.5% उछला, जबकि स्मॉल कैप 100 में लगभग 0.9% की वृद्धि दर्ज हुई. आज बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ ही जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा सूचकांक लगातार ऊपर चढ़ते गए. सेंसेक्स पैक में नजर डालें तो आज 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज हुई. सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले शेयरों में ट्रेंट के शेयरों में 3.5% से अधिक का उछाल आया. हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 3.1% से अधिक बढ़े और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 2.4% की वृद्धि दर्ज हुई. इसके विपरीत नुकसान में रहने वाली कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 1.3% गिरे. टाइटन के शेयर लगभग 0.9% नुकसान में रहे और बैंक के शेयर लगभग 0.7% नीचे खिसके.
Benchmark domestic equity indices ended nearly 1% higher today. Sensex surged 753 points at 0.96% to close at 79,273, while Nifty advanced by 212 points at 0.87% to settle at 24,577. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 rose 0.5%, while the small-cap 100 climbed almost 0.9%. Earlier, the markets opened with marginal gains, and as the session progressed, the indices steadily moved higher. Among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all sectors registered an upward move except capital goods, which fell marginally. Among the top gainers, FMCG gained over 2.2%, Realty jumped almost 2.2%, and mid-small private bank index advanced 1.7%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive. The shares of 2,531 companies advanced, 1,760 companies declined, and 162 companies remained unchanged.
अंतरबैंकिक विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 37 पैसे कमजोर होकर 93.49 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की अन्य छह प्रमुख मुद्राओं के तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान समाचार तैयार किए जाने तक 98.24 पर चल रहा था। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और मार्केट की अगर हम बात करें तो आज सेंसेक्स 753 अंक बढ़कर 79,273, वहीं निफ्टी 212 अंक बढ़कर 24,577 पर बंद हुआ। तो ये जो तेजी हमने आज देखी, ये मजबूत होते आर्थिक संकेतों पर आधारित हम मान सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटिमेंट का ही असर है?
निखिल देखिए, मुझे लगता है अभी जो मार्केट जिस मुकाम पर, जिस जगह खड़ी है, वहां पर शॉर्ट टर्म जो सेंटिमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा असर डाल रहे हैं मार्केट की डायरेक्शन पर। अभी आप देखें तो एक दिन बाजार में हम तेजी देखते हैं, अगले दिन काफी गिरावट आ सकती है। और ये पूरा जो सेंटिमेंट है, पूरी स्थिति है, वो अभी जो हालात हैं मिडल ईस्ट में, खासतौर से चाहे कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बात करें हम, चाहे हम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बात करें, उनसे सेंटिमेंट अफेक्टेड है। मुझे लगता है कि मार्केट्स में जो अप्रैल का महीना है, ये काफी अच्छा महीना अभी तक रहा है। और खास बात यह है कि इस महीने हमने कुछ हद तक एफआईआईज के द्वारा थोड़ी बाइंग देखी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी बड़े पैमाने में मार्च के महीने में सेलर्स थे, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ने महीने में, मार्च के महीने में बेचे थे। हालांकि अप्रैल में भी कुल मिलाकर उनकी बिकवाली रही है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है एफआईआईज बायर्स रहे हैं। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म फैक्टर्स जो हैं, एफआईआईज की बाइंग सेलिंग है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मिडल ईस्ट में, उसका असर बाजारों पर ज्यादा पड़ रहा है। और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल हमने देखा।
वेल, द एफआईआईज एफपीआईज वर द नेट सेलर्स टू द ट्यून ऑफ 1,919 crore rupees, and DII is once again short covering in the market to the tune of 2,221 crore rupees. This is the net figure as far as trade is concerned for today in the equity market. So we saw that FMCG gained 2.2%. Are we seeing a shift in demand because of the season that's come on? You have summers right now, different range of products which is going to be consumed. Is that the reason why FMCG stocks are seeing an upward move?
So, Arjun, there are two reasons why FMCG stocks are favored right now. First, of course, is that FMCG stocks are treated as defensive stocks. So, whenever markets are volatile or they are, you know, there's a apprehension in the markets that there could be a sharp fall, investors tend to buy defensive stocks. Now, those stocks can be in the range, can be, you know, some banking names, or they can be FMCG. Right now, FMCG stocks are very, I would say, attractively priced. The valuations are very, very reasonable, and therefore investors are preferring to buy FMCG stocks. Secondly, we have some preliminary data right now with us, going from automobiles to consumer goods to other items of consumption, which shows that the rural consumption has picked up in India a little bit. So I think that consumption push from Bharat is also pushing demand for FMCG companies. And therefore, my guess is that going forward, we will see FMCG sector doing better than some other sectors.
We can also see that the fourth quarter earnings have been reported by companies. A lot of bellwether stocks have done very well, including TCS. HCL Tech has reported its earnings. They've gone up by 10%, their net profitability. And in aggregate terms, it's 4,488 crore rupees. And Nifty IT index actually was quite bullish today. It went up by almost 1%. Fundamentally, the IT stocks are doing very well. We saw a sharp correction in the markets earlier. Do you feel that maybe value buying at that stage is probably paying dividends now?
Absolutely, no doubt about it. What happened was, in the month of February and March, there was a meltdown, literally a meltdown in IT stocks. And we saw stocks like TCS, no, hit 5-year lows, and similarly other large cap IT
now
stocks.
Now you have buybacks also by companies like
buybacks, of course. So fortunately, government changed the buyback regulations, which has now attracted IT companies, which are very cash rich, to buy back stocks and stabilize their stock prices. Secondly, I think now there is a realization that IT services companies in India may not be that badly hit by the AI bubble, so-called AI frenzy. And a lot of companies, there was a sell down in IT stocks across the world, not only in India, in US also. We saw a lot of sell down in IT stocks. But now I think investors are realizing that the situation is not that bad. firstly. Secondly, the valuations of IT stocks are very attractive. Most of them are quoting at 20 to 25 times PE multiples, I think, which is very, very attractive. And therefore, we see this kind of buying.
Just as a follow-up, tomorrow, you have the fourth quarter numbers for Tech Mahindra. So you see this bullish trend continuing the IT index.
So broadly, what we've seen is that you mentioned the numbers for HCL Tech and, you know, TCS and all. We've seen that the rupee denominated profits for these companies have actually gone up by about low teens, you know, 10% to 10-12%, partly because of depreciation of the rupee, because rupee depreciation also adds to the profits, because the sales are in dollars and therefore rupee depreciation helps them in terms of getting nominal returns. So my guess is that large name IT companies will continue to have this kind of a trend, growth in low teen numbers, and I think over the next 6 months, the numbers should really stabilize.
Apunit, abhi agar bite daur ki hum baat kare, bite dinon ki hum baat karte, to aisa bahut kam hua hai ki jaisa aaj humne dekha ki aaj bazaar mein shuruaat mein mamooli badhat dekhi gayi, uske baad din bhar wo hum tezi dekhte rahe, pure satr mein lagatar bani rahi. To isme sustained buying ka kya matlab status aap dekh rahe ki kis tarah se ye chal sakta hai, aur अगर ट्रिगर की बात करते हैं तो क्या मान सकते हैं? साथ में एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, प्रॉफिट बुकिंग को लेकर के आपके ओपिनियन क्या होंगे?
तो निखिल, बहुत पहला सवाल जो आपका है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि हमने देखा कि मार्च के महीने में काफी बड़ी गिरावट शेयर मार्केट में थी, उसके बावजूद बहुत बड़े पैमाने पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट में पैसा डाला, और इनफैक्ट रिकॉर्ड इन्फ्लोज, करीब 40,000 करोड़ रुपए के इन्फ्लोज हुए म्यूचुअल फंड्स में. यानी जब बाजारों में गिरावट आई तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफी बड़े पैमाने पे नया पैसा स्टॉक मार्केट में डाला. ये एक बहुत अच्छी ट्रेंड था. अब मुझे लगता है कि, और हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो ओनरशिप है इंडियन स्टॉक्स में वो लगातार कम होती जा रही है प्रोपोर्शनली, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो हिस्सेदारी है, उनकी जो ओनरशिप है, वो लगातार बढ़ती जा रही है. मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा ट्रेंड है, हमारे एक डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है. और अभी भी जो आप देख रहे हैं, एक पुल बैक देख रहे हैं मार्केट में, अच्छी तेजी देख रहे हैं, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है उस वजह से है. एफआईआई का थोड़ी सेलिंग कम हुई है, पहले बहुत ज्यादा, अर्जुन ने बताया कि करीब 2000 करोड़ की आज सेलिंग थी. अगर आप मार्च में जाएंगे तो करीब 8000 से 10000 करोड़ रुपए रोज का एफआईआई सेलिंग कर रहे थे, तो उनकी सेलिंग में गिरावट आई है. कुल मिलाकर मैं कहूंगा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेंथ है हमारी, बहुत बड़े पैमाने पे पैसा बाजारों में आ रहा है. दूसरा कारण यह रहा कि आईपीओस की थोड़ी मंदता रही, आईपीओस नहीं आ रहे थे,
जनवरी से कुछ ज्यादा ही गिरावट आ रही है,
और तो सारा पैसा जो है जो सेकंड आईपीओ में भी जो जा रहा था वो भी हम देख रहे हैं कि अब सेकेंडरी मार्केट में जा रहा है. तो ये दोनों मिलाकर, कुल मिलाकर ये ट्रेंड है. एक लास्ट सवाल कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने कहा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में क्या विचार है. मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए, जहां उनको रीजनेबल प्रॉफिट अगर आ रहा है, इट इज अ गुड आइडिया टू सिट ऑन कैश. जरूरी नहीं है कि हम तेजी, इतनी तेजी आ गई है, हम इसमें और इन्वेस्ट करें या ज्यादा एम्बिशियस हो. मुझे लगता है आने वाले एक साल या दो वर्ष में एक एवरेज रिटर्न्स मार्केट में आएंगी, तो बहुत ग्रीडी ना हो. अगर अच्छा मुनाफा आ रहा है कहीं तो हमें
इसमें, अगर एक चीज देखें निवेशक के नजरिए से हम देखते हैं, तो हर दिन मार्केट में एक नया दिन होता है, एक नया चैलेंज होता है. जो नए निवेशक, मतलब जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिहाज से अगर देखें तो कैसा मौका है फिलहाल? अभी
देखिए, निवेश करने के लिए और शुरुआत करने के लिए तो हर समय अच्छा समय है. सिर्फ दो तीन चीजों का ख्याल रखना होता है हमको. पहला कि हमको स्पेक्युलेटिव, यानी हमें कुछ मालूम नहीं है, हम स्पेक्युलेशन में लालच के वश होकर हम कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए. छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटी रकम से शुरुआत करनी चाहिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए, और शुरुआती दौर में तो बहुत समझकर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें. जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाते हैं, अनुभव बढ़ता है, तब आप स्लाइटली हायर रिस्क स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. हमने गलती ये देखी है कि छोटा निवेशक जो है शुरुआत में थोड़ा उसको लगता है मैं रिस्क ज्यादा ले लूं और ज्यादा पैसा कमा लूं. मुझे लगता है वो अवॉइड करना चाहिए.
पुनीत, व्हेन वी टॉक अबाउट कमोडिटी प्राइसेस बीइंग वोलेटाइल, वी टॉक अबाउट यू नो द चोक पॉइंट ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड व्हाई देयर इज अ डबल ब्लॉकेड राइट नाउ, बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमी व्हिच इज नाउ वैल्यूड एट 117 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, एंड इट सिट्स बेसिकली ऑन what the US response is going to be on this interim ceasefire. What does the responses of President Trump tell you right now on social media and before the media for that matter?
So Arjun, I really wish the world knew what his tweets meant, really, in terms of, you know, what is going to happen. Because first of all, they keep changing all the time. First, and they may be in conflict with many other major players who are involved in this conflict. But my sense is that US is trying to pressurize Iran in terms of military strategy as well as psychological and social strategy, where they're trying to somehow isolate Iran, put them under pressure and make them agree to a deal. My bottom line is the US also wants a deal. They don't want to fight further, given a choice. Iran also, of course, wants to put an end to this the war so that they can kind of start rebuilding it and sustain themselves. So my guess is that in spite of all the noise that you hear about war being restarted, etc., my guess is that sooner or later we will find some balance, some deal happening. It may sustain, may not sustain the long term. I think short term we should see some kind of a deal.
Do you believe that the basis of the deal is reparations being paid to Iran? They're demanding $270 billion. Do you see that happening?
I don't think reparations are going to be happening at all. US and other allies will not agree to it. But there could be an agreement to allow Iran to export, restart the export of oil, because that is what they would really, what would really help them to rebuild. They need to have some cash flows, some income, and that can only come from oil and gas exports. So I think ultimately it will boil down to control of oil and gas in the Middle East. The whatever equation the US and the Iran or OPEC countries want to rebuild, I think it will all hinge on the control of oil and gas in the Middle East. That is where we will need to see.
So briefly, defense stocks are bullish right now, but oil and gas and fertilizer stocks, how do you see their outlook in the short to medium term based on what's happening in the Middle East?
So one thing is quite clear that going forward, defense stocks will do better. However, I must have a warning here for investors, because usually, you know, we tend to rush into all kinds of defense stocks. You know, we think it's a defense stock, let's buy it. Many defense stocks are very expensive right now. The P multiples are very, very high. So I think they need to be very cautious in picking which defense stocks investors want to be picking up. They should look at the valuations. They should look at the long-term growth prospects. So it's a tricky business. I wouldn't say you shut your eyes and, you know, buy any defense stock. Oil and gas, of course, is suffering right now. My sense is that after some time, the valuations, when it settles down, the valuations will improve.
और आइए नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर. आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में तेजी देखी गई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.7%, जापान का निक्केई 0.9%, वहीं हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% से अधिक बढ़ा और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली बढ़त देखी गई. यूरोपीय बाजार की हम बात करें तो समाचार तैयार किए जाने तक आज प्रमुख सूचकांक लगभग लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे. जर्मनी के डेक्स में 0.6% और फ्रांस के कैक 40 में 0.3% की तेजी देखी गई, जबकि लंदन का फुटसी 100 बिना किसी खास उतार चढ़ाव के कारोबार कर रहा था. पुनीत जी, आज एशियाई और यूरोपीय बाजारों में तेजी देखी गई, सकारात्मक रुख बना रहा, ये कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है?
निखिल, देखिए, जो ये विश्व भर के बाजार है, अगर देखें पूरा ट्रेंड बाजार में, आज एशियाई बाजारों में, यूरोपीय बाजारों में एक पॉजिटिव अंडरलाइंग सेंटीमेंट जो पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है और जो बाजार होते हैं बहुत दूरदर्शी होते हैं. आप देखिए उनका जो सेंटीमेंट है वो रीड कर लेते हैं मार्केट में क्या होने वाला है, काफी एक्यूरेट रीडिंग होती है मार्केट की. तो मार्केट की तरफ यदि मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो ये बता रहे हैं हमें कि जो भी ये संकट के बादल हैं ये बहुत ज्यादा अब नहीं चल रहे हैं. दे आर क्वाइट पॉजिटिव एंड होपफुल कि ये डील सूनर और लेटर हमें जरूर एक कुछ मिलेगी, और इस वजह से आप पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजारों में देख रहे हैं.
जापान, द येन सीम्स टू विटनेस अ पुलबैक विद द यूएस डॉलर इंडेक्स, डॉलर वैल्यूएशन एक्चुअली डेप्रिशिएटिंग टू 98 डेसिमल पॉइंट्स. How do you see the carry over trade in the US market based on what's happening with the Japanese currency, even though it went up by 0.9% today? Just your brief take on that.
So you mentioned carry trade. Basically, carry trade implies that you borrow yen and in very low interest rates. Because in Japan, the interest rates are very low. So typically, you borrow in yen, convert it into US dollar, and then invest in the US dollar. And then if yen continues to depreciate, you make money on the yen also, and you also have higher interest rates outside. What happened in the last few months was that actually it got reversed. People were caught on the wrong foot, because in Japan, they raised the interest rates a little bit. And because of that, the yen appreciated. And all the people who were there in yen carry trade, they had lost losses. Yen carry trade is one of the largest trades in the world. Approximately, it is our estimate that $5 to $6 trillion have been borrowed from Japan and have been invested worldwide. So right now, when I look at it, it's quite stable. The if yen stays in 150 to 160 range to the US dollar, then yen carry trade does not pose a challenge. But if you see an appreciation of the yen beyond 150, in the sense that if it goes below 150, it goes to 140 or less, then there will be a very chaotic unwinding of the US trade, and it will affect all markets across the world. Right now it is stable, but there is a threat always. If interest rates in Japan rise any further, then this will
happen. So incidentally, Japan is also opening its markets to export of defense products, which is quite unique post Second World War. They also see opportunities in defense. We are having a discussion about that. Tell us about the yuan, because apparently, according to figures, the yuan circulates more than the US dollar globally.
So there are all kinds of data there, and US dollar continues to be the reserve currency of the world. Most of the international trade does take place in US, but clearly yuan has been, I would say, the status of yuan as an international currency has been rising. I think it is many years away when yuan becomes a reserve currency, but right now, yes, yuan is posing a challenge, and I think it is the only challenge to the US dollar in international terms.
Let's have a look at the US markets now. Wall Street closed lower yesterday as tensions between the US and Iran heightened over the weekend. Investors remain cautious as the two-week ceasefire in West Asia neared its expiration. Among the major indices, Nasdaq Composite Index lost almost 0.3%, the S&P 500 dropped over 0.2%, and the Dow Jones Industrial Average ended largely flat. While the markets are live right now, we are seeing a minor correction there as well. What's the investor sentiment in the U.S. markets, especially your hedge funds?
So last week, Arjun, the S&P 500 and Nasdaq 100, these two major indices, they touched all-time highs in U.S. So that tells you what is the sentiment in America. And even Dow Jones, which had taken a lot of beating lately, that also rebounded to within less than 5% decline from the peaks. So clearly, right now in America, the investor sentiment seems to be pretty okay, with indices almost near lifetime highs. So my sense is again that U.S. markets are either oblivious to what is happening on the global stage, or they are telling us that this disturbance is only short-lived, and we could return to better times for U.S.
So, valuations can go sky high, especially with IPOs. SpaceX, for instance, of Elon Musk, what is its prospect?
So sometimes I feel this world is now divided into different silos. And so there are these pockets of extreme affluence and there are pockets of extreme worry. Of course, if we look at the top 20, 30 companies in the USA, we find that they exist in a very different stratosphere. They exist in a very different reality. The valuations are very good. Investors seem to be chasing this. So I won't be surprised if SpaceX valuations at a few trillion dollars, they're accepted by the market. Right now, there's a lot of liquidity in the US markets, which is what is fueling this IPO craze, really.
Well, let's have a look at the UN report on India's economy. India's economy is projected to grow at 6.4% this year and 6.6% in 2027, according to a report by the United Nations. The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific report said that inflation for the country is projected to be 4.4% this year and 4.3% in 2027. India's growth edged up to 7.4% in 2025, supported by robust consumption, especially from the rural economy, along with goods and services tax rate cuts and export front-loading ahead of the US tariffs. The report stated that economies in South and Southwest Asia grew by 5.4% in 2025 compared to 5.2% in 2024, driven largely by strong growth in India. 90% of energy supplies is passing through the Strait of Hormuz. And once again, we come back to this choke point. But the US tariff right now is at 10%. How do you see India managing its inflation?
So, of course, there are enormous challenges for maintaining inflation given the supply constraints and disruptions in supply chains, etc. India has done extremely well so far. We have maintained inflation at a very reasonable level. And it's a great thing because, see, we have a growth at 6.5%. Usually with higher growth rates, you tend to see high inflation rates. So if we maintain this 6.5% growth and 4.5% inflation, we are looking at a nominal GDP growth of about 11% for the entire GDP, about $4 trillion, which is huge, huge amount of growth for an economy of that size. So I think India has done extremely well when it comes to managing growth, managing inflation. And I think it's really to be something to be proud of.
सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य है और देश भर में किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी चाहे क्रूड हो चाहे एलपीजी हो, उसके प्राइसेस में बहुत इंक्रीज देखा गया है, वॉलेटिलिटी देखी गई है। जनवरी में तो हमारा इंडियन क्रूड बास्केट लगभग $63 पर बैरल था, जो मार्च में बढ़कर $113 पर बैरल हो गया और अप्रैल में अभी तक का जो एवरेज है वो लगभग $116 पर बैरल है। इस सभी के बावजूद भी भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि डोमेस्टिक सप्लाईज को सस्टेन्ड कंटिन्यू रखा जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना हो।
वहीं पशुपालन और डेयरी विभाग के निदेशक पूजा रस्तोगी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश भर में दूध की खरीद, प्रसंस्करण और आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि दूध तथा उसके उत्पादों की कीमतें स्थिर है और बाजार में कोई व्यवधान नहीं आया है।
Moving on to the crude oil market, global crude oil prices declined marginally today on expectations that another round of peace talks between the US and Iran will take place this week. Brent crude was trading 0.2% down at $95.30 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading over 0.3% down at $89.30 per barrel when reports last came in. Puneet, these are the futures prices, but the spot market, and this includes not only Brent, WTI, NYMEX as well, and Russia's Urals crude, all of them are in the spot market, is being bought at $115 to $125 per barrel. So why is it that the futures market is actually showing a lower price as compared to the spot market?
Arjun, because there is right now a disconnect between the physical market and the futures market, and futures market is only looking at deliveries 2 or 3 months from now. So I think that is one of the reasons why the market is anticipating within next 2 months or 3 months, there will be a cool down in the sentiments, and therefore the prices will be much lower. Right now, you just heard the Joint Secretary specifying that Indian basket for crude was $115 so far for this month. So clearly, futures are telling us that there's a likelihood that prices will go down. But right now, spot prices are very, very high.
So we have 3.5 million metric tons in strategic petroleum reserves. How long do you see that lasting, and how are we looking to, you know, bulk it up?
So right now, India is not using SPRs. India is trying to keep them. No, in case there's a crisis, we are able to manage this fuel supply situation very well right now. And I think government hopes to keep it that way.
Let's have a look at the bullion market now. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.1% down at 1,53,980 rupees per 10 grams, while silver was trading almost 0.5% lower at 2,52,550 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतरदिवसीय कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जून अनुबंध वाले सोने का भाव लगभग 0.1% घटकर 1,53,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मई अनुबंध वाली चांदी 0.4% घटकर 2,51,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। पुनीत, बहुत ही कम शब्दों में यदि आप बताना चाहें कि चांदी के निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, चांदी के जो निवेशक हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सिचुएशन बहुत वोलेटाइल होती है, डॉलर की सिचुएशन बहुत वोलेटाइल होती है, तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं। पर मुझे लगता है भी शॉर्ट टर्म में ये प्राइसेस स्टेबिलिटी की तरफ ही रहेंगी। बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप हल्के धीरे धीरे इन्वेस्ट,
यानी ज्यादा उम्मीदें भी नहीं लगा सकते,
ज्यादा उम्मीदें भी नहीं लगानी चाहिए। नैरो रेंज में ट्रेड करेगी अभी।
वेल, थैंक यू पुनीत फॉर बीइंग विद अस ऑन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा।
थैंक यू।
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Benchmark domestic stock market indices rise nearly 1%. Sensex adds over 700 points. Nifty reclaims 24,500 level. Major Asian stock markets end in the positive territory. And global crude oil prices decline marginally. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।